ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रतिनिधि सभा में विनियोजित विधेयक के ऊपर विचार विमर्श जारी। आज अतिरिक्त 323 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 3235 पहुंची। लॉकडाउन अवधि में नेपाल के उद्योग क्षेत्रों में 2 अरब 74 करोड़ से अधिक का निवेश स्वीकृत और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 69 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक के ऊपर विचार विमर्श जारी रहा। विनियोजन विधेयक 2077 के ऊपर के विचार विमर्श अंतर्गत आज अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या और कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्रालय के विभिन्न शीर्षकों के ऊपर विचार विमर्श जारी रहा। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से अतिरिक्त 2 लोगों की मौत होने के बाद वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13 पहुंची है। डोल्पा के 58 वर्षीय पुरुष और धनगढ़ी के 55 वर्षीय महिला की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से होने की बात पुष्टि होने के बाद वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ विकास देवकोटा ने कहा कि इसी जेठ 16 गते सुरखेत से धनगढ़ी जाकर क्वारंटीन में रहे डोल्पा की जगदुल्ला गांव पालिका के 58 वर्षीय पुरुष की इसी जेठ 20 गते वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। इसी तरह धनगढ़ी के 55 वर्षीय महिला की कल सुबह सेती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और आज उनका पीसीआर रिपोर्ट आने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आज अतिरिक्त 323 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 3235 पहुंची है। इसी तरह आज अतिरिक्त 32 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 365 पहुंची है। नेपाली कांग्रेस ने स्वदेश वापस लाने को इच्छुक सभी नेपाली को वापस लाने वाली कार्ययोजना बनाने का सरकार से आग्रह किया है। कांग्रेस केंद्रीय जनसंपर्क समन्वय समिति विभाग ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार से ऐसा आग्रह किया। सुदूर पश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा सुदूर पश्चिम के सभी स्वास्थ्य कार्यालयों को 5 दिनों तक कोरोना परीक्षण के लिए लिए जाने वाले स्वाब लेने का काम स्थगित करने का निर्देश जारी होने के बाद कैलाली के स्थानीय तहों में क्वारंटीन व्यवस्थापन में समस्या आई है। इस बात की जानकारी टीकापुर नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख बल बहादुर रावल ने दी। गौरतलब है कि सिर्फ टीकापुर नगर पालिका से सुदूर पश्चिम प्रयोगशाला में 504 लोगों का स्वाब नमूना परीक्षण के क्रम में है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ कि थाइन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संघीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से ही सीमाना के साथ साथ भारत के साथ के सभी समस्याओं का समाधान करने का निष्कर्ष निकाला है। समिति ने चालू आर्थिक वर्ष में किए काम कार्रवाईयों को समेटा गया वार्षिक प्रतिवेदन में देश के राष्ट्रीय हित प्रवर्धन करते हुए एक आपस के लाभ और सम्मान में आधारित होकर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़ा पत्र, असंलग्नता और पंचशील के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर परराष्ट्र संबंध विस्तार हो रहे अभी के बदलते विश्व व्यवस्था में इसको और सशक्त और प्रभावकारी बनाने का निष्कर्ष निकाला गया है। लॉकडाउन की अवधि में नेपाल के उद्योग क्षेत्रों में 2 अरब 74 करोड़ 90 लाख रुपए निवेश की स्वीकृति दी गई है। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न 11 उद्योगों में 92 करोड़ 70 लाख रुपए विदेशी निवेश और 4 उद्योगों में 1 अरब 82 करोड़ 70 लाख रुपए स्वदेशी निवेश की स्वीकृति दी है। पाल्पा की रैना देवी छहरा गांवपालिका वार्ड नंबर 7 के वड़ा अध्यक्ष देवेंद्र पुन 3 लाख रिश्वत सहित रूपंदेही के सैना मैना से गिरफ्तार किया गया है। कल रूपंदेही के सालभंडी में एक व्यक्ति से रिश्वत लेने के दौरान अख्तियार की टोली ने पुन को हिरासत में लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 69 लाख से अधिक मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 3,99,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 33,82,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। अमेरिका में 19,71,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। 1,11,000 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राजील हुआ है। इसके अलावा रूस में 4,58,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 5,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 2,21,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। रॉयटर्स के अनुसार ब्राजील में 35,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 6,50,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में विनियोजित विधेयक के ऊपर विचार विमर्श जारी। आज अतिरिक्त 323 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 3,235 पहुंची। लॉकडाउन अवधि में नेपाल के उद्योग क्षेत्रों में 2,74 करोड़ से अधिक का निवेश स्वीकृत और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 69 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। इसी के साथ हिन्दी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।